करवट बदल रहा, युग ने ली अंगड़ाई,
जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई,
वंदे मातरम करे जगत,
श्रद्धा भाव समर्पण।
आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को दें, एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। मैं हूँ उस प्रोग्राम का सूत्रधार अमन यतन वर्मा, और आज हमारे ब्रह्मा कुमारी के कॉडलीवुड स्टूडियो में मौजूद है एक बार फिर नॉर्थ मुंबई के राजयोगा सेंटर की सब जोन इंचार्ज वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दिव्य प्रभा दीदी जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में फिर से आने का। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप यहाँ पे आती हैं। दीदी, आपसे जानेंगे आज के विषय सहनशीलता और धैर्य पर। उससे पहले राम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवा रहे हैं जो आपने अक्सर सुनी और शायद नहीं समझा होगा कि जिस तरह से कहानी की समस्या का निवारण हुआ वो कितनी अद्भुत है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा आपको दिखाते हैं, आइए देखें।
मेरा नाम सारिका है और मैं हमेशा से ही एक मॉडल बनना चाहती थी, और मॉडलिंग करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। लेकिन मेरे डैड काफी कंजर्वेटिव थे और मैं जानती थी अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ी तो वो मेरा गला घोट देंगे। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया और ये बात मैंने अपनी मॉम से शेयर की। मेरी मॉम खुश हुई पर उन्होंने कहा कि इस सपने को भूल जा, बिकॉज डैड कभी अप्रूव नहीं करेंगे। मैं काफी उदास हो गई थी, मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। मॉम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी और वो खुद भी बहुत ही उदास थी। फिर कुछ दिनों बाद मामा आई और उन्होंने मुझे एक एनवेलप दिया। उस एनवेलप में ब्यूटी पेजेंट का एंट्री फॉर्म था। आई कुडंट बिलीव इट कि मॉम ने डैड को मना लिया था। मैंने उस पेजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड आई वन इट। मॉम डैड दोनों प्रेजेंट थे पेजेंट में मेरे को सपोर्ट करने के लिए। अगर मेरी मॉम ने धैर्य और सहनशीलता से मेरे सपनों को नहीं समझा होता, नहीं सुना होता, तो मैं मॉडलिंग कभी नहीं कर पाती, मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती।
एक सवाल जो मन में उठ रहा है कि अगर औरतें धैर्य से रास्ता न निकालें तो क्या हमारे परिवार अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं? आइए दीदी से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगी, बताइए।
कहा जाता है कि धीरज के फल मीठे होते हैं
जी,
और वर्तमान समय पर जब किसी व्यक्ति की कोई विचारधाराएं हैं उनको हम सुन रहे हैं, उन सुनने के अंदर भी धैर्यता की आवश्यकता है। कई बार कोई व्यक्ति अपने विचार हमारे समक्ष रखता है और तुरंत हम रिएक्ट कर देते हैं उनको, और इसके कारण माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए कोई भी परिस्थिति है, किसी की भी बात है, तो हमें धैर्यता के साथ है ना सुननी चाहिए।
और अगर सामने वाला हमारे बारे में गलत कह रहा हो, बुरा कह रहा हो, या एक तरह से गाली दे रहा हो, तो फिर क्या कीजिए?
उसी समय पर भी हमें ये सोचना है कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझे कह रहा है उसका भी मैं तुरंत रिएक्ट न करूं, लेकिन वो जो कह रहा है वो चीज मेरे में है या नहीं है, तो मुझे एक्सेप्ट करनी है, मुझे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। और नहीं है और वो कह रहे हैं, शायद उनकी समझ में कमी है या तो समझने में कहीं मिसिंग है जिसके कारण है वो
इस तरह की
बात कह रहे हैं।
आखिर कितना गहन योगदान रहता है औरत की सहनशीलता का परिवार को एकजुट करके रखने। इस विषय पर हम और चर्चा करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।
अगला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तेरी चमड़ी का सौदा होता है, तुम वस्तु बन गई हो।
मुझे शक्ति दो।
कमजोर बताना बंद करो, ये भूल नहीं चिंगारी है, इसे सताना बंद करो, सदा भारत की नारी है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख उसमें आत्मदर्शन नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा, विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड नारीत्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध आईएएस ऑफिसर महिला लीना मेहंदले, जोरदार तालियां। नमस्कार, आइए बैठिए। एक बार और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आए अपनी बातें हमें बताने के लिए, अपनी सोच हमें बताने के लिए। तो सीधा मैं आपसे शुरू करता हूँ कि अगर नारी सहनशीलता और धैर्य धारण न करे तो हमारा ये जो सोसाइटी, हमारा जो परिवार है, क्या वो संभल सकेगा? आपको क्या लगता है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि विपदि धैर्यम अथवा विधय क्षमा, यही महान व्यक्ति की पहचान बताई गई है। विपत्ति में धैर्य रखे और अभ्युदय जब हो तो क्षमा रखे। और धरित्री जो है, धरती जो है, उसका परिचायक हम हमेशा ये कहते हैं कि धरती का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो धैर्य, सहनशीलता और क्षमा। वही गुण हम सोचते हैं कि नारी में भी है, क्योंकि वो भी धरती का ही एक रूप है, वो धारण करती है, समाज को धारण करती है। तो धैर्य और सहनशीलता ये तो मतलब छूट ही नहीं सकते, छूटने ही नहीं चाहिए किसी भी परिवार को बचाने के लिए।
और उसमें आपने ऐड कर दिया कि क्षमा भी होना चाहिए,
क्षमा भी होनी चाहिए।
तो औरत के पास वो पावर होनी चाहिए
कि क्षमा कर सके,
कुछ भी हो जाए वो
क्षमा कर। खास करके जब उसका अपना अभ्युदय हो रहा हो, उत्थान हो रहा हो, उसकी प्रगति हो रही हो, उसे हमेशा क्षमाशील होना।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कुछ भी गलत हो, कसूरवार औरत ही ठहराई जाती है और घर की बेटियों के साथ मानसिक अत्याचार बेखौफ होता रहता है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही सच्ची घटना।
मेरी सहेली राधा 10वीं क्लास में पहली नंबर आई, उसे स्कॉलरशिप भी मिला। उसके माता पिता ने धीरज नहीं रखा, उसकी 18 साल में शादी करवा दी। उसके ससुराल वाले जूने जमाने के हैं, राधा को ये सब सहन नहीं हुआ इसलिए उसने आत्महत्या कर ली।
मेरी एक सहेली है, उसके 2 बच्चे हैं, वो सारा दिन बाहर काम करके बच्चों का पेट भरती है। उसका पति कुछ भी काम नहीं करता, उसी के पैसे से शराब पीकर उसको मारता है। उसने बहुत सहन किया अपने परिवार के खातिर, बहुत धीरज रखी कि एक न एक दिन ये सुधर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी सहनशीलता और ऐसी धैर्यता किस काम की? उसने अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए अपने पति को तलाक दे दिया।
लीना जी, दीदी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे?
जहाँ पर बात आती है, जो कोई बात अति में चली जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति पर ही विश्वास और भरोसा रख करके चल रहे हैं, और वहाँ से यदि कोई बात नहीं बन रही है हमारी, तो हम नर्वस हो जाते हैं और देखते हैं कि जीवन में अभी कोई मेरे लिए मार्ग नहीं है, कोई दिशा नहीं है, इसीलिए आत्महत्या करने का विचार है वो आता है। लेकिन ये हमें ध्यान में रख करके चलना है कि परमात्मा हमारा साथी है, वो हमारे साथ हैं, लेकिन हम धीरज नहीं रख पाते हैं और वर्तमान समय पर बहुत जल्दी से हम रिजल्ट चाहते हैं। और वो रिजल्ट नहीं मिलता, हताशा आ जाती है और आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमें धीरज रखने की आवश्यकता है।
क्यों है परिवारों की मानसिकता इतनी संकीर्ण कि औरतें, बहनें, बेटियों से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो हर परिस्थिति को सर झुकाकर स्वीकार कर लें? क्या ये उनकी सहन शक्ति की अग्नि परीक्षा नहीं? आप क्या कहते हैं? और लीना जी, आप इस बारे में क्या कहेंगी? हर बार उनको झुकने के लिए क्यों कहा जाता है?
देखिए, मैंने जब कहा कि सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए, सर झुकाना ये इन सबसे अलग है ना। सर हमारा तभी झुकना चाहिए जब हमें हमारे दिल में वाकई श्रद्धा हो, आदर हो, सम्मान हो, केवल उसी पल, उसी बात के लिए, उसी व्यक्ति के लिए सर झुकना चाहिए, वरना सर नहीं झुकना। सर ना झुके इसके बावजूद भी हम शांति रख सकते, इसके बावजूद भी हम सहनशीलता रख सकते, इसके लिए जरूरी है कि हम परिवार के सदस्यों के साथ एक कम्युनिकेशन अच्छा बना के रखें, संवाद उनके साथ अच्छा बना करके रखें। और जब हमें थोड़ा सा खाली समय मिलता है तो हम कुछ उनके बारे में भी सोचें, वो क्या है,
परिवार वालों के बारे में
वो क्या है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा मुझे लगा, मान लो 2 घंटे पहले मुझे लगा कि उन्होंने कुछ गलती कर दी, तो 2 घंटे बाद जब मेरे पास समय होगा तो मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा कि जो मैं समझ रही हूँ कि वो उन्होंने गलती की, उन्होंने वास्तव में क्या किया है
जी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी कहीं गलती मेरी भी थी या थोड़ी सी कोई परिस्थिति जन्य कोई बात थी, तो उसको मैं कैसे सुधार सकती
हूँ। किसी तरह से इंसान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए उसी समय, आप दोनों ये कहना चाह रहे हैं?
हाँ, उसी समय रिएक्ट करना वो बहुत खतरनाक।
दीदी ने भी यही बात कही, रिएक्ट उस वक्त मत करो, सोचो कि क्या कहा है, उस सोचने के बाद आइडिया लगाओ कि क्या मेरे में वो बात है या मेरे में वो बात नहीं है। और ऐसे भी बहुत से परिवार हैं जिनकी स्त्रियों ने न सिर्फ सहनशीलता और धैर्य की मर्यादा को निखारा बल्कि अपने परिवार को भी खूबसूरती से संभाला है। आइए मिलते हैं ऐसी ही कुछ स्त्रियों से।
मेरी सहेली ने पहली डिलीवरी में एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो कि मेंटली रिटार्डेड था। यह देख उसका सारा परिवार बहुत दुखी हो गया था, उसे बहुत बुरा लगता था, वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, पर उसके पालन पोषण में उसने कोई कमी नहीं रखी। वह बच्चा उसे बहुत प्यारा था, यह उसकी नियति थी, पर उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसके बाद उसने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया जो कि पूरी तरह स्वस्थ और इंटेलिजेंट थे। वह 2 बच्चे भी अपने भाई को बहुत प्यार करते थे। मेरी सहेली ने सभी बच्चों को समान प्यार दिया।
मेरा नाम किरण अरोरा है, मैं जैन फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में 3 जिठानियाँ, 3 जेठ हैं। ये सबसे छोटे हैं, ये सबसे ज़्यादा कमाते हैं और मम्मी जी के पास ला के देते हैं, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी सहेलियाँ बोलती कि तू कितना सहन करती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सहन करती हूँ क्योंकि मैं परिवार में एकता चाहती हूँ।
सब्र का नतीजा जरूर निकले। अब हम अपने गेस्ट से ये जानना चाहेंगे कि हमने ये तो माना कि मुश्किल परिस्थितियों में सहनशीलता और धैर्य से काम लेने से परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति आती है, पर बहुत से लोग ऐसा ही क्यों ये मानते हैं कि ये तो जन्मजात होती है? क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा नहीं है, आखिर किन व्यवहारिक तरीकों को अपनाकर सहन शक्ति को धारण किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए।
मैं ऐसा मानती हूँ कि एक बार सहनशीलता दोनों तरफ से भी आती है। अगर मैं सहनशील हूँ और मुझे लगता है कि दूसरी साइड से भी जो भी परिवार के दूसरे सदस्य वो भी सहनशीलता दिखा रहे हैं तो मेरा भी धैर्य बढ़ जाता है। और ये जो दो तरफा जो सहनशीलता आनी चाहिए या आ सकती है, इसके लिए मैंने कहा कि अपने घर में जो मैंने फार्मूला यूज किया वो है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब हफ्ते में कम से कम एक बार सारे सदस्य एक साथ बैठेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी समय तय किया हो, और कुछ भी भले ही एजेंडा ना हो फिर भी बैठे, और अगर एजेंडा हो तो क्या बात है, फिर उस एजेंडे के ऊपर डिस्कशन होगा। किसी की कोई समस्या है, किसी को कोई अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ बुरा लग रहा है, तो अपनी बातें शेयर करो।
लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे समाज में हमारे जो परिवार हैं उसमें ये बात नहीं होती है कि पूरा परिवार जो है कभी एक वक्त नहीं निकाल पाता है जब सबके सब लोग एक साथ बैठे और एक दूसरे की बात सुने।
या तो मुझे लगता है कि ये तय करना पड़ता है।
ये भी देखा गया है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अपने माँ बाप से स्पेशली अपने बाप से बहुत डरते हैं,
तो ऐसे में कम्युनिकेशन
क्योंकि मैं खुद जब बड़ा हो रहा था मेरे डैड फौज में थे तो फौज में अफसर थे तो वैसे वो कड़क थे और बात करते हुए भी कड़क थे तो वो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि उनसे कैसे बात करें। दीदी आप इस बारे में क्या कहेंगे?
समय है वो परिवर्तनशील है और समय अनुसार हम देख रहे हैं कि वृद्ध हो बच्चे हो तो उनमें एज गैप भी है, सोच का गैप भी है और समय और परिस्थितियां भी, जो वृद्ध थे तब की अलग थी, युवा है तब अलग है, तो उन दोनों में ही डिफरेंस है और इसीलिए सोच तो अलग अलग रहेगी ही दोनों की। लेकिन यहाँ पर भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा, वृद्ध हैं तो वो ये सोचें कि अब समय के अनुसार, हमारे जमाने में वो साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, हमने यूज नहीं की, लेकिन अब समय अनुसार ये चीजें हैं तो हम उनको यूज करने दें और वो कार्य उनको करने दे, कुछ फ्रीडम कुछ छुट्टी उनको भी देनी पड़ेगी हमें। और बच्चे भी ये समझ के चले कि वृद्ध है उनका भी जीवन के अंदर काफी अनुभव है तो उनका रिस्पेक्ट रख करके हम अपने कार्य को है वो करें। और साथ साथ दूसरी बात ये है कि स्वार्थ भावना परिवार के बीच में ना हो। वृद्धों को अपना स्वार्थ तो बच्चों को अपना स्वार्थ, जहाँ स्वार्थ भावनाएं होती हैं तब एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने में ही लगे हुए होते हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर भी हमें ये सोचना है कि हर व्यक्ति वो मेरी सुविधा के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए सारे नहीं जी रहे, उनको अपना भी ख्याल है और उसके साथ मुझे देख करके भी उनको चलना है। ये दोनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे तो दोनों के बीच में तालमेल एक सही हो पाएगा।
जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी इस पर और चर्चा करेंगे पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती।
ब्रह्मा कुमारी से प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं।
का दर्शन कराए अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताए तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको ऊंची उस देवी के रूप में।
आप भी देखिए
नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को देने, एक वैचारिक क्रांति।
Thank you.
नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि किस तरह औरत धैर्य और सहनशीलता का पालन करके पूरे घर परिवार को संभाल कर रखती है और मुश्किल परिस्थितियों में रास्ता बना सकती है। जैसे पनघट पर बार बार मिट्टी की गागर टूटती है लेकिन पनघट के माथे पर शिकन नहीं है, वाह। उसी तरह घर की स्त्री घर के हर छोटे बड़े सदस्य के नाज नखरे उठाती है लेकिन माथे पर शिकन भी नहीं आने देती। आइए अब हम जानते हैं ऑडियंस से कि आज की बहस से उनके मन के किन सवालों का हल निकला। बोलिए।
मुझे अभी एक कॉरपोरेट कंपनी से बहुत अच्छा जॉब का ऑफर आया और मेरी इच्छा भी थी जॉब करने की। मेरी माँ पुराने विचारों की है, उन्होंने पहले तो मुझे मना किया लेकिन बाद में मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे जॉब करने की छुट्टी दी। हालांकि उन्हें समाज की और मेरी सुरक्षा की भी चिंता थी लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जॉब करने की छुट्टी दी।
आपके अलावा कोई और कुछ कहना चाहते
हैं? मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैंने उनके गुस्से के कारण को समझा धैर्य पूर्वक और सहनशीलता से और आज हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं।
वो भी आप भी काम कर रही हैं? वो भी कर रहे हैं।
हम दोनों ही काम कर रहे हैं।
इतना गुस्सा क्यों आता है?
गुस्सा बहुत माइनर चीज के लिए गुस्सा आता है और वो गुस्से का कारण तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा। लेकिन मैं उस चीज को समझती हूँ कि उनको गुस्सा क्यों आता है।
समझती हैं लेकिन हमें नहीं बताना चाहिए। खैर, लेकिन आप समझती हैं, आपने उन्हें संभाल लिया। यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण, धैर्यशील व्यवहार, इन्हीं दो मंत्रों का करो मन से उच्चार। कष्ट क्लेश का कर दो चढ़ सहित संभाल। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। यानी औरत की सहनशीलता परिवार के लिए प्राण है, वायु। अगर औरत सहन करे और परिवार में एडजस्ट करे तो ठीक है और नहीं तो सब कुछ खत्म।
मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि एक और एक दो होते हैं और इस एक को अलग कर दो उस एक को अलग कर दो तो भी वो दो ही रहेंगे लेकिन जब वो एक और एक मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दो ही बने, वो 11 भी बन सकते हैं।
सही है।
तो जब परिवार में धैर्यशीलता होगी तो परिवार के दो सदस्य मिलकर के 11 की शक्ति उन्हें प्राप्त हो सकती है। अगर परिवार के दोनों सदस्य अलग हो जाते हैं तो सब कुछ खत्म होता हो, शायद ना होता हो, हर कोई अपने अपने बल पर अपनी अपनी जिंदगी अलग दोबारा से जी ही लेता है लेकिन वो फिर उसकी ताकत, दोनों की ताकत को अगर आप मिला करके गिने तो दो ही बनेंगे, वो 11 नहीं बनेंगे। तो परिवार में धैर्य रखना, सहनशीलता रखना, वो इसलिए है कि परिवार की ताकत को आप इतना गुना बढ़ा रहे हैं। जब परिवार की ताकत बढ़ती है तो उससे समाज की ताकत बढ़ती है, उससे देश की ताकत बढ़ती है। वो फिर कुछ समाज को, देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं
एक साथ रहकर। क्या बात है, आपके परिवार की ताकत बढ़ती है तो समाज की ताकत बढ़ती है और समाज की ताकत बढ़ती है तो हमारे देश की ताकत बढ़ती है। अब हम दीदी से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगी। आप हमें बताएं कि किन किन साधनों के द्वारा सहनशीलता आती है। मेरे लिए बहुत जरूरी है।
आपके लिए नहीं, सारे विश्व के लिए उसकी आवश्यकता है। देखा जाता है कि अगरबत्ती वो जलती है लेकिन वातावरण में कितनी खुशबू को फैलाती है। वो सहन करना ये दूसरों को सुख देने के लिए है। ये मेरे ध्यान में रहे, ये मेरी स्मृति में रहे तो वो सहन करना मुझे सहन करना नहीं लगता, अखरता नहीं है वो। और खुशी होती है कि मेरे द्वारा इतने लोगों को सुगंध है वो मिल रही है।
हाँ, लेकिन यही जो सोच है, ये सोच कहाँ से बनाई जाए? मतलब कि मुझे जलना है, मुझे सहन करना है ताकि दूसरों को खुशी मिले, वो बात कैसे अंदर लाई जाए?
आज एक चंदन होता है, उसको भी जितना घिसो उतनी सुगंध है वो बढ़ती है। आज एक पत्थर होता है, इनको जितने हथौड़े लगते हैं उतनी सुंदर वो मूर्ति, सौम्य मूर्ति है वो बनती है। तो मैं भी ये सोचूं कि मैं भी जो सहन करूंगी तो उनसे भी मेरे अंदर भी क्या होगा, निखार आएगा,
सुगंध
आएगा। और परिवार वाले देखेंगे कि ये सह रहे हैं, वो देख करके बच्चों में और परिवार के सदस्यों में भी वो प्रेरणा भी मिलेगी कि ये सहते हैं तो हमें भी सहना चाहिए।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। परिवार के लिए औरत की भूमिका के बारे में मैं तो यही कहूंगा, पारिवारिक संबंध बेहद नर मिट्टी से गुंथे होते हैं, उन्हें स्नेह से सींचिए और धैर्य से पोसिए, आप खुद देखेंगे कि फल कितना मीठा होगा। यह हमारा आज का संदेश परिवार के हर प्राणी के लिए। मीना जी और दीदी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमारे प्रोग्राम पे फिर से आए। कैसा लगा आपको हमारे आज का प्रोग्राम और आपने इसे कैसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया, क्या अनुभव है आपके, हमें जरूर लिखें और भेजिए हमारे इस पते और ईमेल आईडी पर। फिर मिलेंगे अपने इस कार्यक्रम नारित दर्शन में। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए, ओम शांति, वंदे मातरम।
संस्कृति की तू रक्षक है, संतति की संरक्षक है,
दिव्य गुणों की मूरत नारी प्रथम गुरु और शिक्षक है।
देखना ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड, हमारे साथ बने रहिएगा।
आप जो मॉडर्न है, आप मॉडर्न अपनी थिंकिंग में रहें।
इसमें क्या करना है कि आप सवेरे से उठते हैं आंख खुलती है आपकी, और रात्रि को सोते हैं आंख बंद होती है आपकी। पूरे दिन में आप किस किस की मुलाकात लेते हैं आप सूची बनाइए।
आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारीत्व को, नहीं एक वैचारिक क्रांति।